आइए सुनते हैं पाठ दुख का अधिकार, पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों पर तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना सुनकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से उसकी तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट पर विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2-4 भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंसू पोछते पोछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल! उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोसी के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी के कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। प्रश्न अभ्यास मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। 1. किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या क्या पता चलता है? 2. खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? 3. उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? 4. उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? 5. बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देता था? इन प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। 1. मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? 2. पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? 3. लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? 4. भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? 5. लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? 6. बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? ख. इन प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। 1. बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के विषय क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। 2. पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या क्या पता चला? 3. लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? 5. इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है स्पष्ट कीजिए। इनके आशय स्पष्ट कीजिए। एक, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। दो, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तीन, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इन शब्द समूहों को समझिए और पढ़िए। कंघा पतंग चंचल ठंडा संबंध। ख, कंघा पतंग चंचल ठंडा संबंध। ग, अक्षुण्ण सम्मिलित दुअन्नी चवन्नी अन्न। घ, संशय संसद संरचना संवाद संहार। अंगा अंधेरा बांट मुंह। ईंट महिलाएं में मैं। इन शब्दों के पर्याय लिखिए। ईमान बदन अंदाजा बेचैनी गम दर्जा जमीन जमाना। तीन, इस उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। उदाहरण बेटा बेटी। चार, पाठ के संदर्भ के अनुसार इन वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना निर्वाह करना भूख से बिलबिलाना कोई चारा न होना शोक से द्रवित हो जाना। योग्यता विस्तार। एक, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। दो, यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो उसकी कहानी लिखिए। तीन, आप पता लगाइए कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके चित्र एकत्र कीजिए और भित्ति पत्रिका में लगाइए। शब्दार्थ और टिप्पणियां। पोशाक यानी वस्त्र या पहनावा। अनुभूति यानी एहसास। अड़चन यानी विघ्न रुकावट बाधा। अधेड़ यानी आधी उम्र का या ढलती उम्र का। व्यथा यानी पीड़ा या दुख। व्यवधान यानी रुकावट या बाधा। बेहया यानी बेशर्म निर्लज्ज। नियत यानी इरादा या आशय। बरकत यानी वृद्धि लाभ या सौभाग्य। खसम यानी पति। लुगाई यानी पत्नी। परचून की दुकान अर्थात आटा चावल दाल आदि की दुकान। सूतक किसी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना। कचियारी अर्थात खेतों में तरकारियां बोना। निर्वाह अर्थात गुजारा। मेड़ यानी खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेत के बीच की सीमा। तरावट यानी गीलापन नमी शीतलता या ठंडक। ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला। छन्नी ककना यानी मामूली गहना या जेवर। सहूलियत यानी सुविधा।